बेहुसूरी जिंदगी अच्छी नहीं, बेमोहब्बत बंदगी अच्छी नहीं, बेहुसूरी जिंदगी अच्छी नहीं, बेमोहब्बत बंदगी अच्छी नहीं, जिंदगी का ढंग होना चाहिए, बेकियादत जिंदगी अच्छी नहीं, जिंदगी का ढंग होना चाहिए, बेकियादत जिंदगी अच्छी नहीं, जिंदगी में मौत होनी चाहिए, जिंदगी ही जिंदगी अच्छी नहीं, जिंदगी में मौत होनी चाहिए, जिंदगी में मौत होनी चाहिए, जिंदगी ही जिंदगी अच्छी नहीं, जिंदगी ही जिंदगी अच्छी नहीं, मौत पर भी मौत आनी चाहिए, इसकी दायम जिंदगी अच्छी नहीं, रोए खंदा कल्ब गिरिया खूब है, खंदगी ही खंदगी अच्छी नहीं, मांगिए मांग में शर्मिंदगी अच्छी नहीं, मांग में शर्मिंदगी अच्छी नहीं, मासियत में शर्म होनी चाहिए, शर्म में शर्मिंदगी अच्छी नहीं, मासियत में शर्म होनी चाहिए, शर्म में शर्मिंदगी अच्छी नहीं, मासियत से जिंदगी नमकीन है, मासियत से जिंदगी नमकीन है, मासियत से जिंदगी नमकीन है, सिर्फ फीकी जिंदगी अच्छी नहीं, सिर्फ फीकी जिंदगी अच्छी नहीं, रहते हैं पोशीदा सहाबे कमाल, रहते हैं पोशीदा असहाबे कमाल, रहते हैं पोशीदा असहाबे कमाल, हर जगह दा जिंदगी अच्छी नहीं, हर जगह दा जिंदगी अच्छी नहीं, बर महल ता जिंदगी है बंदगी, बैगन पे महलता जिंदगी अच्छी नहीं, बर महलता जिंदगी है बंदगी, बर महलता जिंदगी है बंदगी, बेमहलता जिंदगी अच्छी नहीं, बेमहलता जिंदगी अच्छी नहीं, नफ्स दिल कुछ पाक कर लीजिए गुलाम, नफ्स दिल कुछ पाक कर लीजिए गुलाम, नफ्स दिल कुछ पाक कर लीजिए गुलाम, गंदगी ही गंदगी अच्छी नहीं, गंदगी ही गंदगी अच्छी नहीं, बेउसूली जिंदगी अच्छी नहीं, बेमोहब्बत बंदगी अच्छी नहीं,
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن كما قال عليه السلام معزز بھائیو خواتین اسلام اسلامی تعلیمات میں ہر تعلیم ہی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے. اس لیے باقاعدہ باضابطہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق تعلیم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنا حال بنانے کا اہتمام پورے بھائیوں بہنوں کے لیے ضروری ہے. اور چونکہ کسی ایک مجلس میں پوری تعلیم نہیں رکھی جا سکتی اس لیے مجالس کا سلسلہ رہتا ہے کہ کسی وقت کسی موضوع پر کسی وقت کسی موضوع پر اسلامی تعلیم سامنے آتی رہے. پھر ہمارے اپنے حالات کے حساب سے جس چیز کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. بعض تعلیمات ایسی ہیں کہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس قدر اہم ترین ہے کہ اگر اس تعلیم کو پیش نظر نہیں رکھا جا کر اسلامی دیگر شعبوں والی تعلیم پر عمل بھی کرتے ہوں تو جس چیز کو چھوڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور دین جو زندگی میں پایا جاتا ہے اس کا محفوظ رہنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اچھی طرح اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ایک ہے ان کو کر لینا اور ایک ہے ان کو بچا کر رکھ لینا. ایک ہے ان کو لے لینا اور ایک ہے ان کو بچا کر رکھنا. दोनों में बड़ा फर्क होता है। बहुत अच्छे किस्म का बर्तन बाजार से जाकर ले लिया, कांच का, बड़े साइज का, खूब कीमती, बहुत खूबसूरत, बर्तन तो बहुत कीमती ले लिए, बहुत खूबसूरत भी है, साइज भी अच्छा बड़ा है, तो ले लेना अलग चीज है, लेकिन उसको बचा कर रखना एक अलग चीज है। एक बर्तन खरीदे, घर को ले लेके आने के बाद खोल के देखे तो एक पीस था, पांच पीस निकले, तो हुआ क्या, एक अच्छी चीज ली लेकिन बचा कर नहीं ला सके, बेतुका ले लेके आ गए, गड्ढे देखे ना गड़े, दाएं देखे ना बाएं, चाल सीधे रखने के बजाय उछलते कूदते, बेधक्का आने के बजाय धक्कों के साथ, महफूज आने के बजाय इधर उधर टच करते हुए, नतीजे में खरीदे थे एक पीस, घर को आगे खोल के देखे तो कितने निकले, पांच पीस। समझ में आ रहा, अब जाहिर है कि जब एक पीस पांच पीस में तब्दील हो जाएगा तो काम करेगा, अफसोस होगा, माल जाया हो गया, मेहनत अकारत गई, पैसा बेकार हो गया, अफसोस होता है आदमी। कद आदम आईना जाके खरीदे, कद आदम आईना बोले समझते है ना, अपनी कद के बराबर आईना बड़ा, बाजार में जाके देखे कहाँ कहाँ कौन से मुल्कों का है, फ्रांस का है, जापान का है, चीन का है, ये फला का है, ये फला का है, भाई गिलास और कांच और आईना क्वालिटी के एतबार से सुने थे कि बेल्जियम का सबसे शानदार होता है, और आईनों के मुकाबले में उसकी कीमत जरा दुगनी ही थी, मगर ख्वाहिश हुई लेना वही चाहिए, खरीद के ला लिए 5,000 का आईना। कद्दे आदम लेने को तो ले लिए, आते वक्त में ऑटो में पीछे ट्राली में आड़ा डाल दिए, नीचे गद्दी नहीं, ऊपर घास नहीं, दाईं बाईं सेडों में कपड़े नहीं, और चलाने वाला भी मोहतात नहीं, दबा के ले लेंगे आगे, खड़खड़ फड़फड़ बीच में चलता रहा। घर पहुंच के देखे एक आईने के 50 आईने थे। तो आईना तो ले लिया मगर बचा कर नहीं लाए, समझ में आ रही बात। ऐसे ही हम लोग छोटे मोटे आमाल कर ले रहे हैं, आमाल कर लेना अलग है, बचा के ले जाना अलग है। मौलवी लोग हैं तो कुरान पाक की इस आयत पे गौर करें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। जा माना आना और जा बी इसके माना आते हैं लाना। मन जा बिल हसना जो नेकी लेकर आएगा, नेकी कर लिए मगर नेकी लेके जाना एक बड़ा काम है। नेकी कर लेना आसान है, नेकी लेके जाना मुश्किल काम है। बाजार में खड़े रहकर सुबह से लेकर शाम तक शरबत बेच के 1500 रुपये कमा लिए, जेब में डालिए, इधर थोड़ा नोटा इधर थोड़ा नोटा, ये नहीं देखेंगे जेबों में सुराख तो नहीं है, लेते गए डाल देते, लेते गए डाल देते, समझ गए कि माल मेरा 5000 का था, 5000 का माल पूरा बिक गया, खुशी खुशी पंडित ढकल लेते चले गए। घर को जाके बड़े शौक से दोनों हाथों जेब में डाले, दोनों हाथों बाहर निकल गए। पैसे तो कमाए अगर बचाए भी कि नहीं बचाए, यहाँ कुछ पैसे गिर गए, वहां कुछ पैसे गिर गए, वहां कुछ पैसे गिर गए, घर को गए तो फिर वही हाथ खाली पत्ते खां। बात समझ में आ गई भाई यहां तक की। बहुत सारे हम लोग काम कर लेते नेकी के, लेकिन इनको बचाने के वास्ते अच्छे अखलाक वाला होना जरूरी है। नेक कामों के करने के साथ अगर हम अच्छे अखलाक वाले नहीं हैं तो नेकियां महफूज नहीं रहती, बचती नहीं। फिर कितनी अहमियत है हुस्ने अखलाक की, अब समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी ले ले रहे हैं इस मसले को लोग, थोड़े नेकियां कर लिए, समझ रहे हैं बहुत कुछ, औरों के मुकाबले में बहुत ही गनीमत हूं। अगर अच्छे अखलाक नहीं है तो जेब में पैसे डाल लिए मगर जेब में सुराखा है तो नहीं देख लिए, समझो आप। मंजिल पर पहुंचने से पहले पहले दोनों जेब खाली, ऐसे ही नेक आमाल करते रहे लेकिन हुस्ने अखलाक नहीं रखे तो वहां पहुंचने से पहले पहले नेकियों की थैली खाली। इसलिए हुस्ने अखलाक की बहुत अहमियत है। بلکہ تصوف کی تعلیم, تصوف کیا ہے کی تعریف کرتے ہوئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تصوف نام ہی ہے اچھے اخلاق کا. نیکیاں کم رہے پرواہ نہیں, اخلاق اچھا رہنا آدمی. چنانچہ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن السلمی سے حسین ابن احمد ابن جعفر نے نقل کیا, وہ فرماتے تھے کہ تصوف اخلاق کا نام ہے. جو شخص اخلاق میں تم سے بڑھا ہوا ہے وہ تصوف میں بھی تم سے بڑھا ہوا ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں, معاملات بہت رہنا, اذکار بہت رہنا, وظیفے بہت رہنا, تو میں اتنا ہی زیادہ تصوف والا. جو دیکھو وظیفے پوچھتا کیا پڑھوں, صبح میں کیا پڑھوں, دوپہر میں کیا پڑھوں, شام میں کیا پڑھوں, دن میں کیا پڑھوں, رات میں کیا پڑھوں, کچھ وظیفے بتا دیے. تو اور لوگ تو پڑھتے بھی نہیں رہتے نا, تو اتنے وظیفے پڑھ رہا ہوں میں کہ اب تو ان سب کے مقابلے میں بہت اچھا ہو گیا ہوں, بلکہ سمجھ جاتا شاید. جو شخص اخلاق میں جس قدر بڑھا ہوا ہے تصوف میں وہ اسی قدر بڑھا ہوا ہے. اس کا اتنا زیادہ اہتمام تھا, کوئی بات میری زبان سے نامناسب قسم کی, تحقیر کی قسم کی نہ نکلے. اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم مجھے اپنے کسی غلام کے لیے افزاہ اللہ کہتے ہوئے سنو تو گواہ رہو کہ وہ آزاد ہے. بہت سو کو سمجھ میں نہیں آیا ہوں گا, سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے غلام کو کبھی یہ بول دیا اللہ اس کو رسوا کرے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بس میں نے اسے آزاد کر ہی دیا. یعنی اس کو رسوا اللہ کرے کی جو بد دعا ہے اس کو انہوں نے انتہائی بد اخلاقی پر محمول کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی وقت میں یہ جملہ میری زبان سے نکل جائے تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے کفارے میں میں نے اس غلام کو آزادی کر دیا. صبح سے لے کے شام تک کس کو کیا کیا بولتے رہتے ہیں دیکھو. حضرت محاسبی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین چیزیں اب ہم میں ختم ہو گئی ہیں, حسن صورت حسن کردار کے ساتھ. توجہ سے سننا, یعنی اگر کسی کی شکل صورت ذرا اچھی ہے تو اس کے اخلاق اچھے ہوں ایسا بہت کم پایا جا رہا. خالی اپنی اللہ کی بخشی ہوئی شکل صورت پہ اتنا نازا رہتا جس کو دیکھو تو ویسا تو ویسا تو ویسا تو ویسا بولتے ہیں. मर्दों को ताने, औरतों को ताने चलते रहते। कई को बोले थोड़ी सी सूरत अच्छी है, और ये सूरत अच्छी है, इस सूरत की अच्छाई में जनाब को कोई दखल नहीं है। आदमी की किसी की शक्ल सूरत अच्छी है तो उसके अपने अख्तियार से तो नहीं है ना। अगर अपने अख्तियार से शक्ल सूरत अच्छी होती तो सबके सभी हसीनान आलम होते। है ना, कौन होता काला पीला? सबके सभी हसीन होते, अपने अख्तियार में थोड़ा ही है, सबके सब गोरे ही होते थे। अपने अख्तियार में नहीं, गैर अख्तियारी एक चीज है, बस अल्लाह ने दे दी है, तो उसके नतीजे में हर ऐसे को जो अपने से सूरत में जरा उतना अच्छा नहीं है उसको मामूली समझना शुरू कर दी, हकीर जानना शुरू कर दी, मजाक उड़ाना शुरू कर दी, ताने देना शुरू कर दी। कहते हैं कि हुस्ने सूरत के साथ हुस्ने किरदार खत्म हो गया है। हालांकि ये सबको मालूम है कि हुस्ने सूरत है, हुस्ने अखलाक नहीं है तो कौड़ी के काम का नहीं है, ना मर्द ना औरत। अच्छी सूरत भी अच्छी नेमत है, लेकिन अच्छी सीरत के साथ होना। अगर सीरत अच्छी नहीं है तो खाली सूरत अच्छी लगी क्या करती? आजकल सेबा आ रहे हैं, देखो कोसे की मुल्कों में पैदावार होती, काट के कितना जमाना हो जाता मालूम नहीं, फ्रिजों में रख के रहते हैं, वहां तो सलाजों में रहते हैं, वहां से मुंतकिल होके बाजारों में आते, दूसरे मुल्कों में दो दो महीने तीन तीन महीने कितना टाइम गुजर जाता मालूम नहीं। ऊपर से वो बाहर की सर्दी एसी की वजह से, या यूं कह लीजिए कि साहब फ्रीजर में रखे रहने की वजह से, फ्रिजों में रखे रहने की वजह से ऊपर जैसे का वैसा रहता, ताजा मालूम होता एकदम, कलर भी मुतासिर नहीं होता। बड़े शौक से उसे खरीद के लाते, अंदर से काटे, पूरा काला धब्बा निकलता। बस वो अंदर का काला देखते ही ऊपर का गोरा, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, बेचने वाले को गालियां शुरू। तो बाहर की अच्छी सूरत अंदर की सीरत के अच्छी नहीं होने की वजह से बेकीमत हो गई कि नहीं हो गई? ये इंसानों का भी हाल है, खाली अच्छी सूरत लेके क्या करते? इसीलिए हुक्म है, अगर कोई शख्स आईना देखे और अपनी सूरत अच्छी मालूम हो तो कहे परवरदिगार से, ए अल्लाह आपने अपने कर्म से मेरी सूरत अच्छी बनाई है, मेरी सीरत भी अच्छी बना दीजिए। असल फिक्र तो ये है। फिर दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो जहन में रखो, क्या है? सूरत अपने इख्तियार से बनाई हुई नहीं, सीरत अपनी कोशिश से अपने को बनाना है। इसीलिए अजर इनाम सिला ये अपनी कोशिश से किए जाने वाले अमल पर है। यही वजह है कि किसी की सूरत अच्छी है सीरत अच्छी नहीं है तो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा होने की दलील नहीं, और किसी की सूरत अच्छी नहीं है सीरत अच्छी है तो ये अल्लाह के पसंदीदा होने की दलील है। देखो हजरत बिलाल कितने पसंदीदा थे। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर फरमाया तो आगे आगे उलमा कहते हैं कि किसी के चलने की आवाज महसूस हो रही थी, वंशीयत के वास्ते, अकेले नहीं है बोलते, किसके चलने की आरती कर देंगे, हजरत बिलाल की थी, इतने पसंदीदा थे। हजरत बिलाल काले हबश के रहने वाले, एक काफिर के पास गुलाम थे, इस्लाम ले आए, ईमान कबूल कर लिए तो मुखालिफ हो गया, बहुत तकलीफें देता था। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उनको खरीदने का फैसला कर लिया। क्या देख के? अंदर की खूबी देख के खरीदार बने। कौन? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खरीदार हैं हजरत बिलाल की। अंदर की खूबी, बाहर तो कुछ नहीं था। हम लोगों को बाहर का इस फिक्र लायक हो गई, अच्छा दिखना, और वो भी इस दर्जे इस वक्त में हैजा हो गया उसका। जब देखो अब तो जेबों में रख लेके फिर रहे, शायद लिपा थोपी का सामान, दस वक्त पानी से मुंह धोएंगे, मुख्तलिफ चीजा लगाएंगे, अच्छा दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं उनके 50 वक्त देखेंगे, ये कपड़ा अच्छा लग रहा नहीं लग रहा वो देखेंगे, बल्कि बार बार तो अपने को देख के मजीद अपनी खुशी बढ़ाने के वास्ते पूछते इसमें कैसा दिख रहा हूं मैं। अरे भाई ये सूरत के पीछे क्या पड़ गए? और ऐसे ही औरतों को भी चाहिए कि ख्याल रखें इन बातों की। असल चीज अखलाक है, अगर अखलाक है तो अच्छी सूरत भी अच्छी, और अगर अखलाक नहीं है तो अच्छी सूरत भी बेकार है। कहते हैं कि तीन चीजें अब खत्म हो गई हैं, एक हुस्ने सूरत हुस्ने किरदार के साथ, अच्छी सूरत पाई जाती है तो अखलाक बनाने की फिक्र नहीं रहती फिर आदमी। दूसरे हुस्ने कलाम सिद्को अमानत के साथ, कोई अच्छी बात कर रहा तो अच्छी बात में कितना सच्चा है, और उस अच्छी जाहिरी अच्छी बात में किस कदर अमानतदारी दयानतदारी से वो बोल रहा है, ये लिहाज खत्म हो गया। सामने एकदम अच्छी बात करेंगे मगर 100% झूठी रहेंगी। सुनने वाला यह समझे इतनी अच्छी बात कर रहा पूछो मत, बाद में जब नतीजा सामने आता तुम्हारा मतलब पूरा उसके खिलाफ में करा काम। जाहिरदारी बस रियाकारी, जाहिरदारी आज की जबान में अदाकारी। हमदर्दी नहीं है दिल में, पूरी हमदर्दी जाहिर में बताएंगे। खैरखाई नहीं है, पूरी जाहिर में खैरखाई बताया। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके इस हुस्ने कलाम में सच्चाई नहीं है। जाहिर है कि इसका नाम थोड़ा ही अखलाक है, इसका नाम तो किज्ब है, इसका नाम तो रिया है, इसका नाम तो निफाक है कि दिल में अदावत है, जाहिर में हुस्ने ताल्लुक जाहिर कर रहे, दिल में नुकसान पहुंचाने का जज्बा है, जाहिर में उसको उसके साथ गुफ्तगु ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत ही हमदर्द और खैर खा हूं। चुनाचे बहुत मशहूर हो गया आजकल, अरे क्या बोलूं यार उसकी बातों में आ गया मैं, असल में उन्हें ऐसा था सो मालूम नहीं था मुझे। ऐसे ही कहते हैं कि आपसी ताल्लुक में ईफाए अहद बाकी नहीं रहा। یہ ایک پہلو ہے اخلاق کا کہ بات کرو تو بات میں سچائی ہو, امانت ہو. ظاہر اچھا ہے تو باطن اس سے زیادہ اچھا ہو, یہ اخلاق کا حصہ. کسی کے ساتھ تعلق ہے تو اس کے ساتھ عہد و پیمان کو پورا کرنے کا التزام و اہتمام ہو. اخلاق کا ایک دوسرا حصہ دیکھو, حضرت عبداللہ ابن محمد رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تجھ سے جو بھی اللہ کی طاعات صادر ہوں, اللہ کے فرمان کے مطابق جو بھی اعمال تم سے ہوں انہیں حقیر سمجھنا, اور اللہ کی طرف سے تجھے جو کچھ بھی ملے اسے بڑا اور اہم سمجھنا اخلاق ہے. سن لینا بھائی غور سے, بالکل الٹا ہو گیا معاملہ. دو چار اعمال نہیں کرتے, یہ سب کچھ کر رہا ہوں پھر بھی اللہ میاں ایسا کریں گے میرے ساتھ میں. بہت زیادہ سے زیادہ اعمال طاعات کر کے اس کو حقیر سمجھنا, اور اللہ کی طرف سے جو کچھ ملے اس کو بہت بڑی چیز سمجھنا, یہ ہے اخلاق. ہم کو تو کوئی عمل نیکی کا کر لینے کا موقع دے دے رہے ہیں پروردگار, تو یہی ان کی عنایت و مہربانی ہے. اور کسی عمل کو وہ عمل بول دیں تو یہ ان کا فضل ہے, ورنہ ہمارا عمل کیسا ہے ہمارے کو خود معلوم ہے نا. پورا ذکر کریں گے زبان سے کریں گے, دل غیب رہیں گے. نماز پڑھیں گے, صورت میں رکوع, ظاہر میں رکوع سجدہ سب ہوں گا, دل کسی اور کی طرف جھکا ہوا رہے گا. زبان سے بولیں گے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں, دل کی آواز کچھ اور ہوں گی کہ اللہ مجھے یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. زبان کہتی ہے اللہ کی محبت, دل کہتا ہے مال کی محبت. ایسی صورت میں وہ عمل کہلائے جانے کے لائق ہے کیا؟ اب اس کو بڑا سمجھنا تو بڑی نادانی کی دلیل ہے. جو بھی طاعات سرزد ہوں ان کو حقیر سمجھنا, اور اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملے اس کو بہت غیر معمولی اہم ترین چیز سمجھنا, اس کا نام اخلاق ہے. حضرت احنف رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اخلاق کس سے سیکھے, تو انہوں نے جواب دیا قیس ابن عاصم سے. پوچھا گیا کہ وہ اپنے اخلاق میں کس مرتبے پر تھے, تو انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک روز وہ اپنے گھر میں تھے, ان کی ایک خادمہ ایک گرم لوہے کی شیخ پر بھنا ہوا گوشت تھا لے کر آئی. اتفاق سے وہ شیخ خادمہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر ان کے ایک بیٹے کے اوپر گری, اور وہ بچہ جاں بحق ہو گیا. چنانچہ خادمہ پر دہشت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا خوف مت کرو، جاؤ تم اللہ کے واسطے آزاد ہو. ایک تعریف حسن اخلاق کی اور سنیے، بہت مشکل کام ہے جو آپ کو سنائے جا رہے ہیں، سننے کو بہت اچھے ہیں، سننے کو بہت جی کو لگتے ہیں، لیکن جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو سب تعلیم معلیم چوکڑی وکڑی سب بھول جاتا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا، چھوڑنا چھڑانا، گالیاں دینا، طلاق دینا، ذرا ذرا سی بات پہ. اخلاق میں صبر، اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے برداشت رہنا آدمی میں. حضرت شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ دوسروں کو تکلیف اپنے سے نہ پہنچے اور دوسروں سے اپنے کو پہنچی ہوئی تکلیف کو برداشت کرے، اس کا نام حسن اخلاق ہے. پھر سننا غور سے، پنکھے نہیں ہیں، لائٹ نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے، یہ انویٹر سے چل رہا ہے شاید، اس وجہ سے ادھر کے پنکھے چل رہے ہیں ادھر کے نہیں. شاید اس میں سبق بھی ہے، کرنٹ گیا بھی تو آپ سکون سے سننے کے واسطے پہلے جانا ضروری ہے، پہلے آئے تو سامنے بیٹھیں گے، کرنٹ گیا بھی تو انشاءاللہ تھوڑی بہت ہوا ملتے رہیں گی، دیر سے آنے کے بعد کے نتیجے میں شاید تھوڑی سی آزمائش بھی ہے، نقد دم نتیجہ ہے سستی کاہلی کا. کیا کہتے ہیں حضرت شاہ کرمانی، دیکھو غور سے، فرماتے ہیں کہ خود ایذا رسانی سے بچے رہنا، یعنی اپنے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا، دوسروں کی اذیت کو برداشت کرنا، یعنی دوسروں سے اپنے کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کر لینا، یہ حسن اخلاق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے مالوں میں تو سب لوگوں کے لیے گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، لہذا تم خندہ پیشانی حسن اخلاقی کے ذریعے ان کے لیے گنجائش پیدا کرو. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. تم کو جو مال ملتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے تم سب کو آرام راحت نہیں پہنچا سکتے، ان کی اچھی خدمت اس مال سے نہیں کر سکتے. لیکن ایک دوسری چیز تمہارے پاس ہے، اور وہ ہے ہر ایک کے ساتھ مسکراتے چہرے سے ملنا، उसके साथ अच्छा सुलूक करना, ये तो 10 आदमी आए तो उनके साथ भी कर सकते हैं, 100 आए तो उनके साथ भी कर सकते हैं, 200 आए तो उनके साथ भी कर सकते हैं ना। माल में तो इतनी गुंजाइश नहीं रहती, मगर इसके जरिए से तो तुम गुंजाइश सब लोगों के लिए पैदा कर सकते हो, ये फरमा रहे हो। हजरत सईदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, लोगों में सबसे ज्यादा गम में मुब्तला कौन है? लोगों में सबसे ज्यादा गम में मुब्तला कौन है? तो उन्होंने फरमाया कि सबसे ज्यादा गम में मुब्तला बद अखलाक है। यानी बद अखलाक को जितने गम होते हैं दूसरे को नहीं होते। हजरत सईदना वहब रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि बंदा जिस किसी अच्छी सिफत को 40 रोज तक अपनाता है, अल्लाह ताला उसे उसकी तबीयत का जुज बना देता है। यानी एक आध दफा करने से सिफत नहीं बनती, मुसलसल करना। ये जो रोज नामचा बनाए ना, इस वास्ते बना के दिया सु सालिकीन को, तालिबीन को, अपने इस्लाह के ख्वाहिशमंद लोगों को एक रोज नामचा बना के दिया गया। एक अच्छी सिफत अख्तियार कर लेना कि जिस किसी से बात करूंगा अच्छे अंदाज से बात करूंगा, बल्कि एक सिफत लिख लिया समझो पहली तारीख को, रोजाना उसका एहतमाम करना। पूरा दिन गुजर गया है, 10 आदमियों से बात करे, 50 से बात करे, सबसे अच्छी बात करे, किसी से तुर शुरू होकर बात नहीं करे, नामुनासिब जुमले नहीं निकाले। उस दिन जिस किसी के साथ में बात की, खंदा पेशानी से उससे मिले, अच्छे अंदाज से उनसे बात की, तो वो दिन पूरा अगर ऐसा गुजरा तो उस दिन राइट मारना। ऐसा 40 दिन तक करना। हजरत वहाब कहते हैं कि ऐसा करे तो फिर आदत होती है, वरना सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी है कि एक से अगर जरा सी अच्छी बात करा तो थोड़ी देर गुजरने के बाद में दूसरे से एकदम उसके बिल्कुल उल्टा बात करता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी सिफत नहीं बनी हो। सिफत बनने के वास्ते पाबंदी के साथ किसी अच्छाई को इख्तियार करना आसान काम नहीं है, जरा मुश्किल है, बहुत बोझ पड़ता तबीयत पे, तल्ख घूंट पीने पड़ते हैं, बर्दाश्त ज्यादा करना पड़ता। आसानी से नहीं होता, मुजाहिदा बहुत लगता, मुकाबला नफ्स से बहुत करना पड़ता, कुश्तियां अंदर चलते रहते। मगर चूंकि हम अपनी इस्लाह के ख्वाहिशमंद हैं, इस वास्ते इसको अल्लाह के लिए बर्दाश्त करना, फिर सिफत आती। उसने अखलाक बोला तो कोई मामूली सी चीज छोड़ाई। इसी वास्ते कहते हैं कि बाकायदा सीखने की जरूरत होती है, मश्क करना, एहतमाम करना, मेहनत करना। अब लोगों को जब इसकी अहमियत नहीं मालूम होती, इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, बोलते रहते। जानते नहीं कि दीन क्या चीज है, حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑے پاک رکھو, یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے اس کی تفسیر یہ کی ہے, وَخُلْقَكَ فَحَسِّنْ, یعنی تم اپنے اخلاق اچھے بناؤ. راز بزرگوں کا حال بڑا عجیب, یہ ان کا حال ہے, اس پر عمل کرنے کے واسطے نہیں سنا رہا ہوں, خالی ایک حال سنا رہا ہوں. اتنا ظرف نہیں آج ہمارے پاس کہ اس کی ہم تعلیم کریں, صرف سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ کیسے کیسے لوگ گزرے. حضرت سیدنا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ لڑکے دیکھتے تو ان پر پتھر پھینکا کرتے تھے, تو آپ یوں فرماتے تھے کہ اگر مارنا ہی ہے تو ذرا چھوٹے پتھر مارا کرو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری پنڈلی توڑ دو تو مجھے نماز ادا کرنے میں مشکل ہو جائے گی. ایک شخص احنف ابن قیس کو گالیاں دیتا ہوا آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, جب آپ اپنے محلے کے قریب پہنچے تو ٹھہر گئے اور یوں فرمایا کہ میاں اگر کچھ اور رہ گیا ہے تو وہ بھی کہہ ڈالو, اگر کچھ اور رہ گیا ہے تو وہ بھی کہہ ڈالو, کہیں بے وقوف محلے والوں میں سے کوئی نہ سن لے اور تمہیں کچھ جواب دینے لگے. میں اپنے محلے میں جا رہا ہوں, میرے کو جاننے پہچاننے والے لوگ ہیں, تم مجھے جو برا بلا بول رہے ہیں تو لوگ سن لیں گے تو خامخواہ اس کا جواب دینا شروع کر دیں گے, اس واسطے میرے اپنے محلے میں پہنچنے سے پہلے پہلے میں یہیں ٹھہر جا رہا ہوں, اور بھی کچھ بولنا ہے تو یہیں بول لو. حضرت حاتم اعظم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا آدمی ہر ایک کی غلطی برداشت کرے, کیا آدمی ہر ایک کی غلطی برداشت کرے, حضرت حاتم اعظم نے فرمایا کہ ہاں سب کی غلطی برداشت کرے سوائے اپنے نفس کے, اپنے نفس کی غلطی مت برداشت کرو. بیان کیا گیا ہے کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے دجلہ کے کنارے اترے, और अपना पुराने पाक और अपनी चादर एक तरफ रख दी। एक औरत आई और दोनों को उठाकर ले गई। हजरत मारूफ रहमतुल्लाह अलैह उसके पीछे पीछे गए और ये फरमाया कि बहन मैं मारूफ हूं, चलो कोई हर्ज नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई बेटा है जो कुरान पढ़ सकता है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया शौहर है? उसने कहा नहीं। तब आपने फरमाया कि फिर कुरान तो मुझे दे दो और कपड़ा तुम ले जाओ। ये हालात और बुजुर्गों के वाकयात सुनाने से जो मकसूद है वो ये है कि हमारे अकाबिर की जिंदगियों में कुव्वत बर्दाश्त, लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करना और हर एक के साथ अच्छा सुलूक करना इस दर्जे नुमाया था कि उनकी जिंदगियां भरी पड़ी है इस किस्म के हालात से। अब उनके हालात के मुताबिक अपना हाल बनाए ये तो जरा मुश्किल है मौजूदा जमाने में, लेकिन ये बकदरे जरूरत तो हुस्न अखलाक से आरास्ता होने का एहतमाम करना चाहिए कि हम किसी का हक न दबाएं, हम किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, हम अपने किसी अमल को बहुत ज्यादा न समझें, हम बददियानती न करें, हम खियानत न करें, हम झूठ न बोलें, हम दूसरे के हक में बदखाही न करें, किसी के हक में बदकलामी न हो, किसी के हक में बदगुमानी न हो। खास तौर से मौजूदा जमाने में ये बदकलामी का मसला बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह बन चुका है। और झूठ इतना ज्यादा हो गया है, ऐसा साफ झूठ बोलते हैं कि सुनने वाला उसके लबो लहजे और उसके एतमाद वाली कैफियत को देख के ऐसा समझता है ये झूठ नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा हूं। खास तौर से जबान को बंद रखना, खामोशी। हदीस में आता है कि नजात किस में है? हुजूर ने फरमाया खामोशी में। जबान बंद रखना। एक बुजुर्ग ने फरमाया कमरों के, मकानों के जो गेट होते हैं वो एक एक होते हैं आमतौर पर, लेकिन जबान के वास्ते अल्लाह ताला दो गेट लगाएंगे। एक दो होंठों का गेट और दूसरे ऊपर नीचे दांतों का गेट, उसके अंदर जबान है। यानी क्या मतलब? बहुत ही महफूज रखने की चीज है वो। या जिक्र करो, तिलावत करो, नेकी की बात बोलो, दुरूद पढ़ो, खामोश रहो। रास्ते में कभी कभी बोल जिक्र करता रहता हूँ कि भाई जगह जगह लिखा हुआ रहता तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तो उसके साथ साथ हम बोलते रहते हैं कि भाई खामोशी हजार नेमत है। झगड़े पंचायतों घरों में सब ये जबान पर कोई लगाम नहीं होने की वजह से जिसको बोले उसको जो बोले वो बोलते हैं। ऐसा कैसा बोले बोले नहीं नहीं मैंने बोला भी बोल देते यानी गलती पर फिर गलती। पहले बात गलत कही फिर उसके बाद में फिर यूं कहता है कि मैंने नहीं कही। गलती पर गलती इसको कहते हैं सितम बालाए सितम, जुल्म पर जुल्म, जुर्म पर जुर्म, गुनाह पर गुनाह। वो तो चूंकि कहीं कहीं बोलना भी जरूरी रहता है इस वास्ते होंठा सी लेते नहीं, वरना बाज बुजुर्गों का ख्याल जाहिर करे थे कि अगर बोलने की जरूरत ही न पड़े तो इसको बंद ही करके रख देना। पहले जमाने में वो सीने कलर इस्तेमाल में आता था, आजकल वो चिपका लेने का आ रहा ना। बाजे बुजुर्गों के बारे में लिखा हुआ है कि महीनों उन्होंने अपने मुंह में पत्थर रखने का एहतमाम किया ताकि गैर जरूरी बात न करें। किसी किसी बुजुर्ग के बारे में ये बात हमने सुनी, अगर कोई उनके पास में अपनी इसलाह के वास्ते आता और उसको देखते कि ये बहुत बातूनी है, बल्कि बाल बाज तो आके बोलते मौल साहब मेरी जबान काबू में नहीं रहती, तो फौरन खादिम को इशारा करते थे कहते इनको खामोशी की दवा दो। अब वो खामोशी की दवा कौन सी दवा आने वाली है वो देखता रहता था, तो खादिम अंदर जाके एक अच्छे किस्म का बड़ा सा पत्थर नोकीला किस्म का धो के अच्छी तरीके से तश्तरी में रख के लाके पेश करता था, इसे आप मुंह में रख लीजिए जब तक के इजाजत न हो इसको मुंह से बाहर नहीं निकाला जा सकता। बोलते बोलते अब मुंह में रख लिया तो बात करने आता। बड़े मफासिद हो रहे हैं इसकी वजह से, बड़े अख्तलाफात बरपा हैं, बड़े लड़ाइयां झगड़े हैं, बड़े दिल जख्मी हो रहे हैं, जिंदगियां जीरन बन जा रहे हैं, नफरतों और अदावतों की आग भड़कने लग रही, खानदान टूटने टूट रहे हैं, ताल्लुकात इंतहाई नागुफ्ता बे हो जा रहे हैं। बरसों एक साथ जिंदगी गुजारने वाले एक लख्त एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। ऐसी खतरनाक चीज है यह जबान। बहरहाल भाइयों अपने दीन का बहुत अहम तरीन हिस्सा हुस्न अखलाक है, और दीन के दीगर आमाल की हिफाजत में हुस्न अखलाक को बहुत बुनियादी अहमियत हासिल है। अगर दीगर आमाल के जरिए से दीन बनाया जा सकता है तो हुस्न अखलाक के जरिए से दीन बचाया जा सकता है। दीन बचाने का आमाल को महफूज रखने का यह जरिया है, इसलिए अच्छे अखलाक का खुगर बनने का एहतमाम हर भाई हर बहन को करना चाहिए कि जिसमें अखलाक जितने अच्छे वो उसी कदर अल्लाह का पसंदीदा भी और उसी कदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकर्रब भी और उसी कदर इल्म एहसानी और तसव्वुफ में आगे भी। अल्लाह ताला से इल्म अमल की सबको तौफीक अता फरमाए। اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا ربنا آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله.